यशाया अध्याय 32। अध्याय 32 में यशाया कम से कम 2 सहस्राब्दियों के पार भविष्य में चला जाता है। अध्याय 31 में जवान सिंह का अपने शिकार पर गरजने की भांति परमेश्वर का सियोन पर्वत पर आना और युद्ध करना। जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने आहेर पर गुर्राता हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 10 पद 3 में प्रभु यीशु मसीह के फिर से आने के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 3। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में एक सिंह की गर्जन के साथ आएगा, जो यशाया 31 अध्याय 4 पद में घोषित करता है और यरमाया 25 अध्याय 30 में भी लिखा है। योवेल तथा पुराने नियम के अनेक अन्य स्थानों में लिखा है कि प्रभु का दिन सिंह की गर्जन के साथ होगा। यशाया अध्याय 32 पद 1 से लेकर 4 तक। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने, वो तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। जब राजा आकर राज करेगा तब पृथ्वी का पुनरुद्धार होगा। तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। तब उस समय यशाया अध्याय 32 पद 5 मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा। मेरे विचार में ये पद बड़ा रुचिकर है, क्योंकि एक उदारवादी मनुष्य बड़ा चतुर होता है। वो उदारवाद के साये में अपने आप को छुपा लेता है कि उसकी चतुराई छिप जाए, परंतु प्रभु के दिन वो व्यक्ति उदार ना कहलाएगा। यशाया अध्याय 32 पद 5 और ना कंजूस दानी कहा जाएगा। तंग करने वाला असभ्य व्यक्ति। यशाया अध्याय 32 पद 6 क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है कि वो बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। उदारवादियों का कैसा अच्छा वर्णन। उनके मन अधर्म की खोज में होते हैं और वे आडंबर का अभ्यास करते हैं, और उनमें कैसे महान आडंबर है। थियोलॉजी में उदारवादी शब्दों की बार बार परिभाषा देते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं। आपको अंत में उनसे पूछना ही पड़ता है, नए जन्म से आपका क्या अर्थ है, क्योंकि उन्होंने इस शब्द को अपना लिया है। वे करिश्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, वे विभिन्न आत्मिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं और आप कहते हैं, ओह, वो तो मसीह के विषय चर्चा कर रहा है। जी हां, परंतु जब वो मसीह शब्द का प्रयोग करता है तब उसके कहने का अर्थ क्या होता है? क्या उसका अर्थ उस अभिषेक से है जिसे हम जानते हैं कि मसीह मुझ में और मैं मसीह में? जब वो नया जन्म कहता है तब उसका अर्थ क्या है? उन्होंने इन शब्दावलियों को पुनः परिभाषित किया है और आप उनका उपदेश सुनकर कहते हैं, ओह, वो तो नए जन्म के बारे में उपदेश देता है, क्या ये अच्छी बात नहीं? यदि आप इन शब्दावलियों की परिभाषा उनसे सुने तो पाएंगे कि नए जन्म की उनकी परिभाषा हमारी समझ से सर्वथा भिन्न है। हमारी परिभाषा के अनुसार नया जन्म परमेश्वर के आत्मा द्वारा नया जीवन है, जो नया आत्मिक जीवन होता है। ये आडंबरी है कि शब्दों की परिभाषा बदल दी जाए, कि दुर्जनता उगली जाए, परंतु आप समझ नहीं पाते क्योंकि आपके पास वे शब्द नहीं हैं जिनको वे प्रयोग कर रहे हैं। सत्य तो ये है, वे परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोल रहे हैं। यशाया अध्याय 32 पद 6, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। उदारतावादी कलीसियाओं की और उदारतावादी शास्त्रियों की विशेषता ये है कि वे मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति जो भूख और प्यास है उसे मिटा नहीं पाते, और ऐसी कलीसिया तृप्त नहीं होती। परमेश्वर और परमेश्वर के वचन की उनकी भूख मिटती ही नहीं है। परमेश्वर के लिए उनके मन में जो प्यास है वो तृप्त नहीं होती है। उनके पास परमेश्वर के साथ सच्चे अनुभव और संबंध के विषय में देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। वे वाद विवाद में अत्यधिक चतुर होते हैं, वे अपना विचार सिद्ध करने में चतुर होते हैं। उनका उद्देश्य राजनीति और सोशल गॉस्पल होता है। वे सोशल गॉस्पल पर बल देते हैं। उनका उपदेश सुनना बड़ा मन भावन होता है और बड़ा उचित प्रतीत होता है। इसी संबंध में यशया कहता है कि जब राजा आएगा तब ये उदारतावादी वास्तव में जो है वही पुकारे जाएंगे। यशया अध्याय 32 पद 7 से लेकर 9 तक। छली की चालें बुरी होती है, वो दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलता हो। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वो उदारता में स्थिर भी रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। यशाया अध्याय 32 पद 9 से आरंभ करके वो अब उस समय की यरूशलेम वासी स्त्रियों पर ध्यान देता है। यहां मैं कहूंगा कि स्त्रियां किसी राष्ट्र की नैतिकता का सच्चा मापदंड होती है। स्त्रियां ही होती है जो नैतिक स्तर की स्थापना करती है, और जब स्त्रियां नैतिकता से पथ भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ नहीं बचा रहता है। अतः भविष्यद्वक्ता फिर से यरूशलेम की स्त्रियों के बारे में कहता है, उसने पहले भी कहा है। यशाया अध्याय 32 पद 9 से लेकर 11 तक। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखे न होगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थर थराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो। अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। दूसरे शब्दों में राग रंग छोड़कर परमेश्वर को खोजने का समय आ गया है। परमेश्वर की ओर फिरो, टाट विलाप का वस्त्र था। अपने राष्ट्र की हालत पर विलाप करो। मेरे विचार में उस राष्ट्र की स्त्रियों को दिया गया यशया का संदेश आज की स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भ्रष्ट स्त्री जाति का अर्थ है भ्रष्ट राष्ट्र। यशाया अध्याय 32 पद 12। वे छाती पीटेंगी। यशया विलाप करने के लिए कहता है। इस पद से प्रभु यीशु मसीह के वे शब्द ध्यान में आते हैं जो उसने कहे थे कि महाक्लेश के समय क्या होगा जब वे जंगल में भागेंगे। हाय उन पर, वो कहता है जो शिशुओं को स्तनपान कराती है या गर्भवती है, क्योंकि यरूशलेम में पाप के पुरुष विनाश के पुत्र से बचकर भागना बहुत कठिन होगा। वो मंदिर को अपवित्र करने और परमेश्वर का निंदा करने आएगा, अतः स्त्रियां छाती पीटेंगी। यशाया अध्याय 32 पद 13 से लेकर 15 तक। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, और जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, जब तक कि परमेश्वर पुनरुद्धार का काम न करे। इतिहास में इसराइल देश सदियों तक व्यर्थ, निर्जन और जंगल बना पड़ा था। अब ये सियोन अभियान और इसराइल राष्ट्र की पुनर्स्थापना के कारण ये स्थान उजाड़ भूमि से फलवंत वाटिकाओं में बदल गया है। शारोन की घाटियों और मेगिदो की घाटी जो दलदल थी, वहां की पानी सुखाकर अब उस भूमि पर खेती की जा रही है। वहां विस्तृत कृषि विकास हो चुका है। यशया ने इस देश के उजड़ जाने की भविष्यवाणी की थी और वैसा ही हुआ। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। अंत के दिनों में यहोवा कहता है, योवेल दूसरा अध्याय 28 पद, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योवेल ने ये भविष्यवाणी की और परमेश्वर ऐसा ही करने के लिए तैयार है। जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। यशाया अध्याय 32 पद 16 और 17। तब तक उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल। मैं इस पद को पसंद करता हूं। यशाया अध्याय 32 पद 17। शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। ये कैसा मन भावना पद है। धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मैंने उचित काम किया है, मैं उसमें चैन से रहता हूं। शांति और निश्चिंत रहना, मैंने जो किया वो उचित है। ये कैसा चिताकर्षक पद है। यशाया अध्याय 32 पद 18 से लेकर 20 तक। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, और वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो।